ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 21 जून 2020 के लिए है। विषय: क्या ब्रह्मांड मनुष्य साथ परमाणु बल द्वारा विकसित है? स्वर्णपथ मती: और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। उत्तरदायी अध्ययन प्रेरितों के काम। तब पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथने के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वास्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी विधि भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वास्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वास्तु का प्रायोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाची उसे टटोल कर पा जाएं तो भी वो हमसे किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा था कि हम तो उसी के वंश भी हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यशाया। हे आकाश, ऊंचे सुर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे वान के सब वृक्षों, गला खोलकर ऊंचे सुर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इसलिए मैं महिमावान हूँगा। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यशाया। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ दान दूंगा, जिससे तू जानेगा कि मैं इसराइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उस पर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा। उत्पत्ति। इब्राम की पत्नी साराई की कोई संतान न थी। उत्पत्ति। जब इब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वचा बांधूंगा और तेरे वंश को अति अंत ही बढ़ाऊंगा। सो अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के सामूह का मूला पिता ठहरा दिया है, और मैं तुझे अति अंत ही फूलाऊं फैलाऊंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी साराई है उसको तू साराई न कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राजे राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष का भी संतान होगा और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वचा होगी। मैं अपनी वचा इसहाक के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष में इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। उत्पत्ति। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वो 100 वर्ष का था। अय्यूब। पुरुष के नियन अपनी कमर बांध ले क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर देगा। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सोत खींचा? उसकी नींव कौन से वास्तु पर रखी गई और किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। क्या तू कच्चा पचिया का गुंछा घोंट सकता है और मरगा शिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू रास्तियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता और सप्तार्षी को साथियों समेत ले चल सकता है? अय्यूब। क्या तू घटाओं का तोलना और सर्वविज्ञानी की आश्चर्य काम जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्यहीन है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वो न्याय और पूर्ण धाम को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। मरकस। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और अदूमिया से और यर्दन के पार और सौर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। मरकस। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें, और वो भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें यहाँ तक नाव पर लगी कि वो भी पानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? आमूस। हे इसराइल के घराने, जो कच्चा पचिया और मरगा शिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुन्दर का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के सहार संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर सभी चीजों का उसकी समानता पर पक्षपात करता है। जीवन अस्तित्व में परिलक्षित होता है, सत्यता में सत्य, अच्छाई में ईश्वर, जो अपनी शांति और सत्यता प्रदान करता है, निःस्वार्थ भाव से प्यार, सुंदरता और रोशनी में नहाया हुआ। अपने पैरों के नीचे की घास चुपचाप बहती है, नम्र पृथ्वी के वारिस होंगे, मामूली आर्बिट्स उसकी प्यारी सांस को स्वर भेज देता है, महान चट्टान छाया और आश्रय देती है, चर्च गुंबद से सूरज की रोशनी कैद में झला काटी है, बीमार कक्ष में घूमती है, फूल को रोशन करती है, पारिदृश्य को शोभित करती है, पृथ्वी को आशीर्वाद देती है। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। ईश्वर ब्रह्मांड को बनाता है, आध्यात्मिक समझ का प्रकाश केवल अनंत की झलक देता है, यहां तक कि नेबुला भी अंतरिक्ष की अप्रापकता को दर्शाता है। तथाकथित खांज, सब्जी और पशु अपधारित या सामग्री संरचना से अधिक आकस्मिक नहीं है। जब सभी के सितारे एक साथ गाते हैं, मन ने पृथ्वी में होने से पहले खेत का पौधा बनाया, आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के काम मन की रचना के दिन और मौसम है, जिसमें सौंदर्य, उदात्तता और पवित्रता, हंदवीय प्रकृति मनुष्य में प्रकट होती है और ब्रह्मांड से कभी गायब नहीं होती। ब्रह्मांड आध्यात्मिक विचारों से भरा है, जिसे वो विकसित करता है, और वो मन का आज्ञाकारी है जो उन्हें बनाता है। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रीरत ने उसे उन शब्दों में व्यक्त किया है जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। मन विचारों में अपनी समानता बनाता है और एक विचार का पदार्थ गैर बुद्धिमान पदार्थ के कथित पदार्थ होने से बहुत दूर है, इसलिए पिता मन पदार्थ का पिता नहीं है। भावतिक इंद्रियां और मानव अवधारणाएं आध्यात्मिक विचारों को भावतिक विश्वासों में अनुवादित करेंगी और कहेंगी कि मानव सिद्धांत अनंत सिद्धांत के बजाय ईश्वर, दूसरे शब्दों में दिव्य प्रेम बारिश का जनक है, जो ओस की बूंदों की भीख मांगता है, जो अपने मौसम में मुजाजारोथ को आगे लाता है और अपने बेटों के साथ आर्कातोरास का मार्गदर्शन कराता है। मनुष्य साथ ब्रह्मांड का सही सिद्धांत भावतिक इतिहास में नहीं बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। परिरत विचार ब्रह्मांड की एक सामग्री, कामुक और नश्वर सिद्धांत को त्यागता है और आध्यात्मिक और अमृता को अपनाता है। ये पवित्र शास्त्र की आध्यात्मिक धारणा है, जो मानवता को बीमारी और मृत्यु से बचाती है और विश्वास को प्रेरित करती है। जब हम अस्पष्ट आध्यात्मिक शक्ति के साथ बात करते हैं, जब हम अपने सिद्धांतों में ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम वास्तव में इस बात का समर्थन नहीं कर सकते कि ये क्या है और क्या नहीं कर सकता है। हम सर्वशक्तिमान को भंग कर देते हैं। ऐसे सिद्धांतों के लिए दो चीजों को नेतृत्व करते हैं, वो या तो पदार्थ के आत्म विकास और सर्व सरकार को देखते हैं, या फिर वो मानते हैं कि पदार्थ आत्मा का उत्पाद है। इस दुविधा की पहली शाख को शब्द करने और पदार्थ को स्वयं की शक्ति के रूप में विचार करने के लिए अपने स्वयं के ब्रह्मांड से निर्माता को छोड़ना है। दुविधा की दूसरी शाख को समझ कर और ईश्वर को पदार्थ कार माता मानते हुए न केवल उसे सभी आपदाओं, भावतिक ना के नैतिक के लिए जिम्मेदार बनाना है, बल्कि उसे अपने स्रोत के रूप में घोषित करना है। इस प्रकार उसे प्राकृतिक कानून के नाम से और सदाचारी को शासन बनाए रखने का दोषी माना जाता है। एक अर्थ में ईश्वर प्राकृति के समान है, लेकिन ये प्राकृति आध्यात्मिक है और पदार्थ में व्यक्त नहीं है। मनुष्य साथ ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है, बल्कि विज्ञान है। यीशु ने बीमारी और पाप को ठीक करने और मृत्यु की नींव को नष्ट करके दिव्य सिद्धांत और अमर मन की शक्ति का वर्णन किया। वो दिव्य मन जिसने मनुष्य को बनाया, वो अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। यीशु ने कहा, मुझे पता था कि तू मुझे हमेशा सुनता है। उसने मरे हुओं में से लाजर को जीवित कर दिया, तूफान को रोका, बीमार को ठीक किया, पानी पर चला। भावतिक प्रतिरोध पर आध्यात्मिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करने का दिव्य अधिकार है। ब्रह्मांड मनुष्य की तरह विज्ञान द्वारा अपने दिव्य सिद्धांत ईश्वर से व्याख्या की जानी है और फिर इसे समझा जा सकता है। लेकिन जब भावतिक अर्थों के आधार पर समझाया जाता है और विकास, परिपक्वता और कशे के विषय के रूप में प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो ब्रह्मांड जैसे मनुष्य है और होना चाहिए एक रहस्य है। आसंजन सामान जैसे और आकर्षण मन के गुण हैं, वो दिव्य सिद्धांत से संबंधित हैं और उस विचार शक्ति के उपासनहार का समर्थन करते हैं जिसने पृथ्वी को अपनी कक्षा में शुरू किया और गर्व की लहर से कहा, यहां तक और इसके आगे नहीं। आत्मा सभी चीजों का जीवन, पदार्थ और निरंतरता है। हम ताकतों पर चलते हैं, इन्हें वापस ले लें और सर्जन को दह जाना चाहिए। मानव ज्ञान इन्हें पदार्थ की ताकत कहता है, लेकिन दिव्य विज्ञान घोषित करता है कि वो पूर्ण रूप से दिव्य मान से संबंधित हैं, इस दिमाग में निहित हैं और इसलिए उन्हें उसके सही घर और वर्गीकरण के लिए पुनर्स्थापित करता है। सूर्य केंद्रीय शांति है जहां तक हमारे सूर्यमंडल का संबंध है, और पृथ्वी सूर्य के गिर्द एक वर्ष में एक बार घूमती है। इसके अलावा अपनी धुरी पर दैनिक रूप से घूमती है। जैसा कि संकेत किया गया है, खगोलीय आदेश ईश्वरी सिद्धांत की कार्रवाई का अनुकरण करता है और ब्रह्मांड भगवान का प्रतिबिंब। इस प्रकार आध्यात्मिक तथ्य को निकट लाया जाता है और ये ईश्वरीय विज्ञान से संबंधित है, जैसे कि ब्रह्मांड की चिरास्थाई सरकार में प्रदर्शित होता है। दिव्य सिद्धांत और विचार आध्यात्मिक सिद्धभाव का घाटन करते हैं। स्वर्ग और अनंत काल, सत्य के ब्रह्मांड में सामग्री अज्ञात है, त्रुटि का कोई भी दबाव वहां प्रवेश नहीं करता है। ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर का शब्द त्रुटि पर अंधेरे के लिए कहता है, ईश्वर सब में है और हमेशा मौजूद प्रेम का प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसलिए अनंत आश्चर्य की, अनंत अंतरिक्ष, अनगिनत आध्यात्मिक रूपों में उसे दर्शाते हुए ईश्वर के विचारों से अभिभूत है। भगवान के ब्रह्मांड में सभी कुछ उसे व्यक्त करता है। अब मैं मीरबेग रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सजाओं से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।